आप सब तक सारी कॉन्फ्रेंस के नोट्स पहुंच चुके हैं। ये सारी ऑनलाइन है, जिसे खाका कहते हैं। उम्मीद है कि आप जाकर इसमें से और ज्यादा सीखकर खुद अपना खाका कशी कर सकते हैं कि खुदा के कलाम को बड़े उम्दा तरीके से दूसरों तक लेकर जाएं। सो आए हम खुदा के जुड़ चुके हैं जी, अपनी अगली क्लास को शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने पहला और दूसरा बाप उसका खुलासा या थोड़ा सा उस पर वर्क किया है। अभी तक 3, 4, 5 और छठा बाप क्या है जी, मौजूद है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इस सेशन में हम 3 बाप को मुकम्मल करें, और उसके बाद फिर अगले सेशन में 4 और 5 बाप देखकर खाने के बाद हम क्या करेंगे जी, पूरी कॉन्फ्रेंस को मुकम्मल करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि हर कॉन्फ्रेंस पर, जैसे हम अमरीका में जब करते हैं, 2 रोज़ा होती है, जुमा हफ्ता और इतवार की सुबह, जो 2 मैसेज होते हैं। तो जब हम कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करते हैं तो वहाँ पर मामूल में हम क्या करते हैं जी, अशायर वानी करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर भी इस निज़ाम को शुरू किया जाए कि जब सब पासवान इकट्ठे हों, क्योंकि कलीसियाओं में तो की जाती है, लेकिन बहुत दफ़ा पासवानों को मौका नहीं मिलता। इस पर हम एक ख़ास टॉपिक पर क्या करेंगे जी, सीखेंगे कि जो प्याला यीशु ने कहा था उसके अलावा 3 और प्याले पिए जाते थे, जिस पर हम गौर करेंगे शायरबानी की रस्म से। सो ब्राय मेहरबानी, कैमरा चल रहा है कि 2 मुस्तकबिल में एक पैगाम को देखेंगे, उनके लिए मुसीबत का बायस ना बने, कैमरे के आगे से गुजरना बंद करें। शुक्रिया, खुदा मुदा आपको बरकत दे जी। सो आए हम खुदा की जुड़ चुके हैं और दुआ करेंगे। खुदा बाप, तेरा शुक्र करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में आज के कलाम के लिए, प्रस्तुति के लिए। खुदा तेरे कलाम की जो खुदा खुदा रहनुमाई है, खुदा हम तेरे कलाम की बातें हम सब के लिए जाबता हयात है, हम सबको हिकमत और दनाई दे, हम उस पर खुदा खुदा गौर और फिक्र करके तेरी मर्जी को पूरा करें। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन आमीन। हम बात सीख रहे थे बड़ी कुदरत के बारे में। पादरी साहब ने बड़े जबरदस्त तरीके से 2 बाप को बयान किया। मैं चाहता हूं कि 2 बाप को हम जल्दी जल्दी से देख लें। इसके सारे नोट्स आपके पास मौजूद हैं। जब हम 2 बाप के देखते हैं पहले हिस्से को, तो 10 आयात हैं, और इन 10 आयात में जो बड़ी कुदरत खुदा की काम करती हुई नजर आती है, उसके वसीला से हमें क्या मिलता है जी, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों के सबब से मुर्दा थे। हमारे वो माजी को लेता है और कहता है कि हमारा माजी कितना भयानक, कितना खतरनाक, कितना मुर्दा, कितना बंजर था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, लफ्ज मगर को उर्दू में और इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, बट जिसका लफ्ज का तर्जमा मगर या लेकिन किया जाता है, तो जब हम देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस में जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज है, और जब हम पहली आयत को पढ़ते हैं, उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, और वो मुर्दगी को बयान करता है कि इस मुर्दगी में तुम क्या थे जी, दुनिया में किसके पैरोकार थे, किस तरह तुम्हारा जिंदगी का तरीका कार था। जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो 2 का अदद हमें बड़ा ही वाज़ेह तौर पर नजर आता है, और जब हम बाइबल मुकद्दस को सादा तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है जी, 2 जगहों की बात करती है, दोजक की और फरदोस की, चाहे उसे आलमे रवा कह लें, चाहे उसे आलमे बाला कह लें। बाइबल मुकद्दस बात करती है 2 ज़मीरों की, गुनाहलूदा फितरत और नई फितरत, जिसे कहते हैं नए सिरे से पैदा होने में नई इंसानियत और पुरानी इंसानियत। बाइबल मुकद्दस बयान करती है ईमानदार के बारे में और गैर ईमानदार के बारे में। बाइबल मुकद्दस बयान करती है जमीन और आसमान के बारे में। बाइबल मुकद्दस बयान करती है जिस्मानी जिंदगी और रूहानी जिंदगी के बारे में। بائبل مقدس بیان کرتی ہے عقل مند اور بے وقوف کے بارے میں. اگر آپ دو کے عدد کو لے کر شروع کریں تو پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک آپ کو یہ عدد کے پیچھے جو مقصد ہے وہ ملے گا کہ کس طرح بائبل مقدس دو کے عدد کو بیان کرتی ہے. اور یہاں پر جو پہلا عدد ہے وہ کیا ہے جی؟ تم گناہوں میں گمراہ اور کیا تھے جی؟ مردہ تھے. مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی ہم کو کیا کیا جی؟ زندہ کیا. سو دو کا عدد ہمیں بائبل مقدس میں بہت جگہوں پر ملتا ہے جو کہ بڑا ہی زبردست ٹاپک ہے جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. سو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلی 10 آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا لکھا ہے جی؟ روحانی طور پر زندہ کیا اور قادر مطلق کے ساتھ تخت پر اپنے ساتھ اس نے ہم کو مقیم کیا بٹھایا. سو ان 10 آیات میں ہم دیکھیں گے چند ایک باتوں کو. جب ہم پہلی 3 آیات کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر پالوس رسول کہتا ہے خدا نے غضب کے فرزندوں سے ہمیں فضل کے فرزند بنایا. تم پہلے شرارت کی روحانی فوجوں کے پرنس کو جسے کیا کہا جی؟ ہوا کی عملداری کا حاکم اس کے پیروکار تھے. لیکن اب تم کائنات کے بادشاہ جس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کا باد اور سلامتی کا کیا ہے جی؟ شہزادہ ہے. پہلے تم دنیا کے اس حاکم کے پیروکار تھے جو موت اور تباہی اور بربادی اور گمراہی کی طرف لے کر جاتا تھا. لیکن جب اس میں تم زندہ کیے گئے تو یسایا 11 باب کی اس کا نام کیا ہوگا؟ عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اب تم کیا ہو جی؟ سلامتی کے شہزادے کے کیا ہو جی؟ فرزند ہو. سو اسے کیا ہم کہیں گے جی؟ خدا نے غضب کے فرزندوں کو فضل کے فرزند بنایا. یہ دو باب اس کی پہلی 3 آیات ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خدا کی محبت و رحم نے ہم کو عالم روا سے نکال کر عالم بالا پر بٹھایا. یاد ہے یسوع مسیح کے شاگردوں نے جب یسوع مسیح کے پاس تھے تو یسوع مسیح نے کہا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یسوع کچھ کہتے ہیں، ایلیا کچھ کہتے ہیں، نبیوں میں سے کوئی نبی ہے، کچھ کہتے ہیں کوئی اور ہے. یسوع مسیح نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہیں؟ ان سب کی نمائندگی کرتے ہوئے پترس جہاں جہاں بھی دیکھتے ہیں سب سے زیادہ بات کرتا ہوا نظر آتا. اس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یسوع نے کہا کہ پترس یہ بات تجھ پر خون اور گوشت نے نہیں بلکہ میرے باپ کے روح نے تجھ پر ظاہر کی ہے. اس لیے میں تجھے بتاتا ہوں کہ کیا ہوگا جی، کلیسیا پر عالم روا کے دروازے غالب نہیں آئیں گے. اور پالوس رسول یہاں پر کہتا ہے 4:7 آیت میں کہ خدا کی محبت نے ہم کو عالم روا کے دروازوں پر غلبہ دے کر عالم بالا پر اپنے ساتھ کبریا کی تاہی جگہ کیا دیا ہے جی؟ مقام دیا ہے. اور تیسری بات کے بعد ہم چوتھی بات کیا دیکھتے ہیں؟ افسیوں 2 باب اس کی 8 اور 10 آیت کو. خدا کی بخشش نے مردہ مغرور غرور سے ہم مردہ مغرور و غرور سے ہم کو نئی مخلوق بنایا. ہم مردور تھے، مغرور تھے اور غرور کے نشے میں چور تھے. اس نے ہم کو اپنے فضل کی غزل میں نئی مخلوق بنایا. سو افسیوں 2 باب اس کی 8, 9 اور 10 آیت کو پڑھتے ہیں. تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے. یرمیا 23 باب کو جب پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے اگر کوئی صاحب حکمت ہے تو وہ اپنی حکمت پر نہیں، اگر کوئی دولت مند ہے تو اپنی دولت پر نہیں، اگر کوئی طاقت مند ہے تو اپنی طاقت پر نہیں، اگر کوئی زور آور ہے تو اپنے زور پر نہیں، اگر کوئی فخر کرے تو اس بات پر کرے کہ وہ یہوہ خداوند کو جانتا ہے. پالوس رسول کہتا ہے ہمارا فخر کس پر بنتا ہے؟ کہ ہم کو اس کے فضل کے وسیلہ سے بخشش میں ہمیشہ کی زندگی ملی ہے. اور یہ ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے، اور ہم نئی مخلوق بنے ہیں تاکہ ان کاموں کو کریں جو پہلے سے اس نے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیے ہیں. اور پانچویں بات کو جب ہم دیکھتے ہیں، پانچویں بات ہمیں سکھاتی ہے افسیوں 2 باب اس کی 11 سے 22 آیت میں، وہ کیا ہے جی؟ مسیح یسو نے دوبارہ خدا کے ساتھ صلح کرا کے ہم سب کو پاک روح القدس کی جگہ بنا دیا. ہم مردہ ہڈیوں کا مقام تھے, اس نے ہمیں نئی مخلوق بنانے کے ساتھ ساتھ اپنا مقدس بنا دیا. ہم اس کا مقدس ہیں. خدا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلے وہ باغ عدن میں چلتا پھرتا اور گفتگو اور رفاقت اور شراکت ٹھنڈے وقتوں میں کرتا ہوا نظر آتا ہے. پھر نبیوں پر خوابوں اور رویا اور کیا ہے جی مختلف طریقے سے گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے بعد میں وہ خدا کا بندہ موسیٰ کیا کرتا ہے, خدا کی مرضی کے مطابق خیمہ بناتا ہے اور خدا خیمہ میں ہم کلام ہوتا ہوا نظر, اور کیا ہے جی وہ شکائنہ گلوری جسے کہتے ہیں جی سلیمانی ہیکلی میں یا سلیمانی ہیکل سے پہلے خیمہ اتجواں میں کیا ہے جی خدا کا جاہو جلال نظر آتا ہے انسانوں سے گفتگو کرتے ہوئے. اس کے بعد سلیمانی ہیکل میں, سلیمانی ہیکل کے بعد جب خدا نے دیکھا کہ بیابان میں, اور اس کے بعد پھر باغ عدن میں, پھر اس کے بعد خیمہ اجماع میں, پھر سلیمانی ہیکل میں, اور پھر طرح طرح سے نبیوں کے ساتھ خوابوں اور رویا کے وسیلہ سے اور فرشتوں کے کلام کے وسیلہ سے باتیں کرتے کرتے خدا نے جو منصوبہ بنایا وہ کیا کیا کہ میں بنی نو انسان کو اپنے رہنے کی جگہ بناؤں گا, وہ میرا مستقل مقام ہوگا. سو ایفسیوں دو باب اس کی 11-22 آیت کو جب پڑھتے ہیں تو یہ 11 آیات ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں. جیسے 11-18 آیت کو پڑھتے ہیں تو مسیح یسو نے کیا کیا, چھٹے پوائنٹ کو, مختون کو نامختون کے درمیان سے, مختون اور نامختون کے درمیان جدائی اور دشمنی کی دیوار جو بیچ میں تھی ڈھا دی, اور صلیب پر کیا کیا جی ہمارے لیے راستہ بنا دیا. اور ساتواں پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں, پردیسی اور جلا وطنوں کو مقدسوں کے ہم وطن اور آسمانی شہر کے شہریت دلا دی. جب میں امریکہ میں گیا تو وہاں پر میرے پاس پہلے 5-6 گرین کارڈ تھا. گرین کارڈ رہا تو اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں کیا کروں گا جی, نیشنلٹی لوں گا. 5 کے بعد تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں نیشنلٹی لے لوں تاکہ پھر آنے جانے کا کوئی مسئلہ نہ ہو, بہت سے حالات خراب ہوتے ہیں. تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں کے ہو, آپ کی شہریت کیا ہے, آپ کس جگہ کے سٹیزن ہو, آپ کس شہر کے حریشی ہو. تو میں نے اسے کہا بہت زبردست سوال کیا آپ نے جی, میں آپ کو تھوڑا سا وقت لوں گا تفصیل سے بیان کروں گا. پیدائش کے تعلق سے میں پاکستان میں پیدا ہوا جو میری کیا ہے جی پیدائشی جگہ ہے. گرین کارڈ ہولڈ ہونے کے بعد میں یہاں پر کیا ہوں جی مستقل حریشی ہوں امریکہ کا. لیکن جب میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا تو اس نے مجھے آسمان کی شہریت دے دی یسوع مسیح کے وسیلہ سے. اس لیے میری عارضی پیدائشی شہریت پاکستان سے ہے, میری مستقل جو دنیاوی ہے وہ امریکہ سے ہے, اور میری ابدی شہریت وہ کیا ہے جی آسمان پر ہے. اس لیے میں آسمان کا سٹیزن ہوں. اس لیے اس نے ہمیں کیا کیا ہے جی, اس دنیا سے جب ہم جلا وطن تھے اس نے ہمیں اپنے وطن میں کیا دی ہے جی, نئی سٹیزنشپ کی آفر دی ہے. اس لیے خدا کیا ہے جی زبردست سفیر ہے جو ہمارے لیے کیا کرتا ہے جی, بڑے نئے نئے راستے کھولتا ہے. اور ساتواں پوائنٹ اس کے بعد ہم آٹھویں پوائنٹ کو اگلے حصے کو دیکھتے ہیں, وہ کیا ہے جی مکاشفہ. مکاشفہ جسے انگلش میں ہم ریولیشن کہتے ہیں, یہ 3 میں کیا ہے جی, 3 کی پہلی آیت سے 13 آیت پر ہم غور کریں گے, اور اس میں سے چٹ پٹ چند ایک باتوں کو سیکھیں گے. پالوس رسول نے کلیسیا کے تولت ذاتی کے اور مجسم و تجسم کے غیبانہ وحی یا مکاشفہ کا فہم کیا ہے جی اس باب میں بیان کیا ہے. تو اللہ زادی کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ یسایہ نبی کے صحیفے میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے دیکھو ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا, اور تولد کا جو اردو لغوی معنی نکلتے وہ ہے جی ہمارے لیے پیدا ہوا, پیدا ہونا. سو کلیسیا کی پیدائش, کلیسیا کی شروعات, تولد کا مطلب کیا ہے جی شروعات یا پیدائش. سو کلیسیا کی پیدائش کیسے ہوئی ہے جی؟ تجسم اور مجسم اور تجسم یسوع المسیح کے اس الہی مکاشفہ سے جس کے بارے میں اس نے کہا کہ انسان خدا بنا اور ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا کہ باپ کے اکلوتے کا. سو پالوس رسول یہاں پر تعارف کرواتا ہے اپنے بارے میں کہ وہ کہاں پر تھا جب اس نے یہ خط لکھا. پہلی آیت میں وہ کہتا ہے اسی سبب سے میں پالوس رسول تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح یسوع کا قیدی ہوں. دوسرے لفظوں میں مسیح میں قیدی ہوں, کوئی مجھے قید تو نہیں کر سکتا. اگر میں قید ہوں تو کیا ہوں جی؟ رضا کرانا طور پر. تو وہ کہتا ہے کہ میں مسیح کا قیدی ہوں, مسیح کے نام کی خاطر سب کچھ سہتا اور سامنا کرتا ہوں. اور دوسرا نقطہ ہم جب دیکھتے ہیں افسیوں 3 باب اس کی 2-6 آیت میں, تو یہاں پر پالوس رسول اللہ الہامی نزول سے متعارف کرواتا ہے. جب ہم 2 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے شاید تم کو خدا کے اس فضل کے انتظام کا شاید تم نے خدا کے اس فضل کے انتظام کا حال سنا ہوگا جو تمہارے لیے مجھ پر ہوا. وہ کلیسا کو بیان کر رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا. جب میں راہ پر جا رہا تھا, دمشق کی راہ پر تھا, کلیسیا کو تباہ کرنے کو جا رہا تھا, اپنی روحانی حالت میں مردہ تھا اور کیا تھا جی, اس بات میں سرگرم تھا کہ اس مسیح کے پیچھے چلنے والے ہر ایک کو کیا کروں جی, دکھ دوں. تو خداوند یسوع مسیح مجھ پر ظاہر ہوا اور اس نے میری آنکھوں کو کھول دیا. سادہ لفظوں میں یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ تم نے خدا کے اس انتظام کا حال سنا ہوگا جو اس نے میرے لیے نظام کیا تھا کہ کس طرح مجھ کو سول سے پالوس بنائے, منکر سے کیا بنائے جی, پرستار بنائے. اور وہ بیان کرتا ہے 34 آیت میں, یعنی کہ یہ وہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا, چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر حال لکھا ہے. جو پہلے 2 باب ہیں یہ کیا ہے جی, مختصر حال ہے. بڑا مختصر جواب میں اس نے لکھا ہے تم کون ہو, تم کس کے ہو, تم کیا ہو اور تم میں کیا کچھ حاصل ہے, تم کیا تھے اور اس نے تمہیں کیا بنا دیا, تم زمینی تھے اس نے آسمانی بنا دیا, تم اس لائق نہیں تھے اس نے اپنے فضل کی دولت سے تم کو گناہوں کی منڈی سے خرید کر کہا کہ اس کے لیے میں بکنے کو تیار ہوں. جب غلام خریدے جاتے تھے جی, یوسف کے دور میں چلے جائیں یا تھوڑا سا اور 100-150 سال پیچھے چلے جائیں, جب برٹش کے دور میں چلے جائیں تو برٹش کیا تھے جی, بہت سے غلاموں کو خریدتے تھے. اور غلام خریدے جاتے تھے, ان کے دانت چیک کیے جاتے تھے, ان کی ہڈیاں چیک کی جاتی تھی, ان کا قد, ان کا گوشت, ان کو سب کو چیک کیا جاتا تھا کہ کہیں میں بیمار جان غلام تو نہیں خرید رہا کہ میرا پیسہ نقصان خراب ہو جائے. اس غلام کو چیک کرتے تھے پھر اسے خریدتے تھے. اور غلاموں کی منڈی لگتی تھی. ہمیں بھی روحانی اعتبار پر یسوع مسیح نے کیا کہا, جب خداوند خدا کی اس نافرمانی کے باعث آدم اور حوا اور تمام نسل انسانیت گناہ میں گھر گئی تو کیا ہوا؟ اس کی ایک بڑی سادہ سی سٹوری ہے کہ ایک کشتی بنانے والے نے کشتی بنائی. وہ کشتی کو اس نے بڑے جی سے بنایا, بڑے چاہ سے بنایا, بڑی محنت سے بنایا اور اس جیسی کشتی اس نے پہلے کبھی نہیں بنائی تھی. اور اس نے کہا کہ اس کو میں نے بنایا ہے, اب میں اسے آزمانے کے لیے کیا چڑھوں گا جی, پانی کی لہروں پر چھوڑوں گا. وہ اسے آزمانے کے لیے اس کشتی کو پانی کی اس کنارے پر لے گیا اور جا کر اس کشتی کو چھوڑتا ہے کہ اسے دیکھے کہ اس کی کاراگری کیسی بنی ہے, اسے ازما سکے. اس نے اس کشتی کو پانی پر چھوڑ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کاراگر کی جو کشتی ہے اس کی کاراگری کا جو کیا ہے جی, نمونہ ہے, دیکھتے ہی دیکھتے اس سے دور ہو گیا اور پانی کی اور ہوا کی وجہ سے وہ کشتی گم گئی. اس بنانے والے کو بڑا افسوس ہوا. اس نے کہا کہ جس پر میں نے بڑی محنت کی, جسے میں نے بڑے چاؤں سے بنایا, بڑی محنت سے بنایا, وہ میرے ہاتھ کا بنایا ہوا کیا ہے جی, انوکھا پیس گم ہو گیا. वो कश्ती बनाने वाला वापस आता है, अफसरदा है, सोचता है कि मैं क्या करूं, क्या होगी वो मेरी कश्ती। इस बात में सोचते सोचते कुछ दिन बाद वो अपने शहर के बाजार में जाता है और बाजार से गुजरते गुजरते वो एक दुकान का शोकेस देखता है और उस शोकेस में वो कश्ती शीशे के पीछे ताले के अंदर रखी हुई है और उसके नीचे एक स्टिकर उसे मिलता है और उसकी कीमत क्या है जी, 50,000। वो उस कश्ती को देखता है, ये मेरी है। वो उनको बताने की कोशिश करता है, इसे मैंने बनाया है, ये मेरी कारागरी है, ये मेरी तखलीक है, ये मुझे वापस कर दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें मिली है, अब ये हमारी है और ये हमारे सुपुर्द है, इसको अगर लेना है तो 50,000 रुपए की कीमत अदा करनी होगी। उस कश्ती बनाने वाले ने कहा कि मेरा अनोखा काम शीशे के पीछे ताले में पड़ा हुआ है, मैं नहीं चाहता कि कोई और इसे खरीद ले। उसने जैसा एक तैसे हो सके पैसों का इंतजाम किया और जाता है और जाकर उनको 50,000 का वो दाम देता है और कहता है कि मैंने अपनी बनाई हुई कश्ती को अपना रुपया पैसा देकर खरीद लिया। ठीक वैसे ही जब खुदा ने आदम को बनाया, उसे आजाद मर्जी देकर छोड़ दिया और उसे कहा कि जा जाकर जो कुछ तुझे दिया गया है खा पी, लेकिन इस काम को ना करना। और आदम गुनाह में गुमराह हो गया और उसको बचाने का और दोबारा रिश्ता बहाल करने का एक ही जरिया था कि पूरी दुनिया में उसने देखा कि हीरे जेवरात सोना चांदी नीलम रूबी कोई भी चीज इस लायक नहीं कि उसको उस गुनाहों के गुलामों की मंडी में से खरीद सके। मैं क्या करूंगा कि सब कुछ करूंगा। और उसने अपने बेटे को भेजा कि वो इंसान बने और गुनाहों की गुलामों की मंडी में जाए और जाकर कहा कि इसके बदले मेरी नीलामी की जाए। और खुदा ने अपनी तखलीक को क्या कर दिया जी, फिर वापस हासिल कर दिया, जैसे कश्ती बनाने वाले ने अपनी कश्ती को खरीद लिया। सो पौलुस रसूल यहां पर बयान करता है, जिसे तुम पढ़कर मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूं जो और जमानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब जाहिर हो गया है। जो कुछ आज हम जानते हैं ये मूसा को नहीं पता था, इसके बारे में दानियल को फुल इलम नहीं था, इसके बारे में यर्मिया को पता नहीं था। अगर हम देखना शुरू करें कि उनके जज्बात या उनका सोचने का तरीका क्या था, तो हम पुराने अहदनामे के ईमानदारों को देखते हैं कि वो उस कोने पर खड़े हुए हैं और वहां से वो देख रहे हैं कि आने वाले 1,000 साल में खुदा क्या करेगा। तो उन्होंने आने वाले 1,000 साल में देखा कि वो औरत से पैदा होगा, वो मसलूब होगा और कहानी खत्म। कुछ नबियों ने इस तरह देखा, कुछ ने कहा कि वो दौद की असल और नस्ल से होगा, वो क्या होगा जी, पैदा होगा और क्या होगा जी, अपने लोगों को दोबारा बादशाही देगा और कोई भी कौम उनकी मुखालफत में नहीं होगी, बल्कि वो क्या होगा जी, दौद की तरह उसकी बादशाही अबदी होगी। बहुत कम नबियों ने देखा था कि खुदा का बेटा आएगा, धुतकारा जाएगा और रद्द किया जाएगा, मसलूब किया जाएगा, दफन किया जाएगा, मर जाएगा, मुर्दों में से जी उठेगा, लेकिन दोबारा वो फिर वापस आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए कि उनके लिए उस मंसूबे को पूरा करे। पौलुस रसूल कहता है कि ये बात और जमानों में ना बनी इंसान पर, ना किसी और रसूल पर, ना किसी और नबी पर जाहिर हुई थी, लेकिन अब रूह में उसने इस भेद को जो पोशीदा था जाहिर कर दिया है। हम जिस दौर में जिंदगी बसर कर रहे हैं, ऐसा दौर ना पहले कभी आया है और ना ही कभी होगा, क्योंकि हमारे बाद जब हम आसमान पर उठाए जाएंगे तो क्या होगा जी, यूवल नबी की वो नबूवत दोबारा पूरी होगी कि बुजुर्ग ख्वाब देखेंगे, नौजवान नबूवत करेंगे और बूढ़े ख्वाब और रोया और सब कुछ होगा। ये कब होगा? जहां से खत्म हुआ है वहां से दोबारा शुरू होगा और खुदावंद का रूह क्या है जी, कलीसिया के साथ आसमान पर उठा लिया जाएगा और दोबारा लोगों को नबूवत रोया ख्वाबों की तबीर मिलेगी, क्योंकि फिर लोग क्या होंगे जी, वैसे ही जैसे पुराने अहदनामा में जदौन के ऊपर, शमाउन के ऊपर और फिर उसके बाद यहन्ना के ऊपर, दाऊद के ऊपर, यर्मिया के ऊपर रूह आरजी तौर पर ठहरेगा और उनको वही कहेगा जो उन्हें करना है। हम जिस दौर में जिंदगी बसर कर रहे हैं ये बड़ा जबरदस्त दौर है। इसके लिए बहुत से नबियों की ख्वाहिश थी कि वो उसे देखें, वो उसे जानें, वो उसे समझे, पर ना पाया। हम वो मुकद्दस लोग हैं जिन पर ये बात पौलुस रसूल कहता है, रूह ने जाहिर की है कलीसियाई दौर। और आगे क्या देखते हैं, छठी आयत को जब पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, यानी ये कि मसीह यसू में गैर कौमों की खुशखबरी के वसीला, यानी ये कि मसीह यसू में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मीरास में शरीक और बदन में शामिल हो और वादा में दाखिल हो। यहूदी फ्रेम, तस्वीरों का फ्रेम देखते ना जी, जब तस्वीर का फ्रेम बनाया जाता है तो तस्वीर को देखकर उसके अंदर फ्रेम, उसके बाहर फ्रेम किया जाता है। यहूदी फ्रेम क्या था, यानी कि उनके सोचने का निजाम। हम यहूदी हैं, हम बरकात के मालिक हैं और कोई नहीं, क्योंकि यहूदियों के नजदीक बाकी सब क्या थे जी, गैर कौम थे। खुदा ने कहा कि मैं गैर कौमों को क्या बनाऊंगा, अपनी दुल्हन का हिस्सा बनाऊंगा। और खुदावन ने इस भेद को क्या किया कि खुशखबरी के वसीला से गैर कौम क्या होंगे जी, मीरास बनेंगे, उसके वारस बनेंगे। तो ये है जी 6 आयात में। और उसके आगे क्या चलता है जी, तीसरा नुक्ता, पौलुस रसूल की मसीह में रसालत गैर कौमों के लिए है। हम में से कितने यहूदी हैं जी, कितने यूनानी हैं जी, कितने इब्रानी हैं जी, कोई भी नहीं। तो हम किन में से हैं, गैर कौम। हम पर यह बख्शिश खुदा के कलाम के मुताबिक क्या है जी, उसकी फजल की हुई है कि उसने हम नामखतूनों को, मखदूनों के साथ, नामखतून किनको कहा गया है दूसरे लफ्जों में जी, गैर यहूदियों को। मखदून किनको कहा गया है जी, जिनका खतना हुआ वो यहूदी हैं, जो यहूदी तरीका कार पर चलते हैं। सो उसने नामखतूनों के साथ क्या है जी, मखदूनों को बरकत दे दी और कहा कि आप जो मसीह यसु में हैं उन सब के में कौन है जी, ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई आजाद रहा, ना कोई गुलाम रहा, अब सब कुछ क्या है जी, एक जैसे ही है, यानी कि मसीह के फर्जंद, मसीह में उनका एक ही दर्जा। सो पौलुस रसूल की रिसालत 7वीं आयत से पढ़ते हैं, और खुदा के उस फजल की बख्शिश से जो उसके, उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ, मैं इस खुशखबरी का खादम बना, मैं इस खुशखबरी का खादम बना। यीशु मसीह की एक बात है, यूहन्ना की झील में एक भाई ने सवाल किया था कि यीशु मसीह ने कहा कि जो काम मैं करता हूं, जो मुझ पर ईमान लाएगा मुझसे भी बड़े काम करेगा। जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये ऐसे ही है जैसे गुस्ताखे मसीह है कि यीशु से बड़े बड़े काम, लेकिन यीशु खुद कहता है कि जो काम मैं करता हूं तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। और उसका एक बड़ा जबरदस्त नमूना मिलता है यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी को, जब हम देखते हैं उसके पहले पैगाम से बियाबान में, यानी कि लूका 4:5 से लेकर यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने तक। यीशु ने 5,000 को शेयर किया, लेकिन पतरस ने पहला पैगाम दिया तो कितने हजार ने यीशु को कबूल कर लिया था जी, 3,000 ने। ये उन बड़े कामों में शामिल है, ये उन बड़े कामों में शामिल है। अगर कोई क्रूसर देखे, आज क्रूसर देखे जिसमें 1 या 2 लाख लोगों की तादाद है, खुशखबरी का पैगाम दिया जाए और उसमें से 50,000 या 70,000 लोग यीशु को कबूल कर ले, तो वो क्या है जी, बड़ा काम है। यीशु मसीह ने कहा कि जो काम मैंने शुरू किया उसको तुम खत्म करोगे, ताकि लोग जाने कि खुदा का बेटा जिसको करता था, खुदा के फर्जंद जो उस पर ईमान लाएंगे, उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे, कि बहुत से गुलाम आजाद किए जाएंगे, बहुत से लोग जिनकी पहचान नहीं उनको पहचान दी जाएगी। जब हम यीशु मसीह की जिंदगी का मुतालिया करते हैं, उसको देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो बहुत कम लोग नजर आते हैं जिन्होंने यीशु को कबूल किया। लेकिन आज 2000 साल बाद की बात है, पूरी दुनिया में करोड़ों के हिसाब से मसीही पाए जाते हैं। ये क्या है जी, उन बड़े कामों में जो यहाँ पर पौलुस रसूल जो बात करता है वो क्या है, इस खुशखबरी का खादम बना। पौलुस रसूल ने बहुत से ऐसे काम किए जो यीशु ने अपनी जमीनी जिंदगी में नहीं किए, और उसके लिए उसने पहले कह दिया था कि मेरे पीछे तुम ऐसे ऐसे काम करोगे जो मेरे कामों से भी बड़े होंगे। तो इसलिए ये बड़ी जिम्मेदारी है। जब कहते हैं ना कि बाप बेटे जैसा होगा तो फिर दो नतीजे निकलते हैं, यहां ते बाप वर्गा अपना भंगी ते चंगी ते मंदी ते तंगी होएगा, या फिर अगर बाप रास्तबाज है तो फिर रास्तबाज की तरह वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलेगा। सो उसके बाद आगे क्या कहता है, आठवीं आयत में, मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटा हूं। मेरे पास वक्त नहीं कि हम पौलुस रसूल की क्या है जी एक तरीके को देखें। वो सबसे पहले अपने आप को कहता है मैं सबसे छोटों रसूलों में से सबसे छोटा रसूल हूं। उसके बाद वो कहता है जी मैं इस लायक नहीं कि रसूल कहलाऊं। उसके बाद वो कहता है मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं। और फिर वो ऐसे ऐसे अपने क्या है जी सारे बयानात में बयान करता है वो कहां था और कहां पर आया और कहां पर उस जगह जाने का इरादा है। तो यहां पर वो कहता है मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटों से छोटा हूं। अगर हक था तो पौलुस को था तो वो कह सकता था जी मेरे पास PhD, MDD और BBG और हर तरह की क्या है जी वो लेटर अपने साथ लगा सकता था और कह सकता था और चलो तुम्हें की पता मैं गैमलियल दे स्कूल च पढ़िया तुम्हें की पता। ते आज बहुत दफा हलीमी की रूह जब नहीं पाई जाती, अगर किसी ने एक महीने का कोर्स किया ना तो उसके च एक महीने के एक घंटे की क्लास की तो अपने नाम के नाल चार पांच लैटर ला के कहेगा जी आई एम रेवरेंट कॉल मी बिशप, मैनू बिशप कहो, मैनू रेवरेंट कहो, मैं तो PhD किया, मैं तो DTD किया, मैं तो MDiv किया, मैं तो शेड डेड किया, पता नहीं की कह जाते। बहुत दफा मुझसे पूछते हैं वो कहते हैं जी भाई साहब ताड़ी डिग्री की है, मैं उन्होंने कहना जी PhD। बी से बोर्ड BA, उनको पहले मैं कहता मैंने BA किया है। अच्छा जी, और उनको जब बयान करता हूं BA का मतलब बोर्न अगेन, मैंने इसरे से पैदा हुआ। उसके बाद मेरी एक और डिग्री है BD। एक ही डिग्री है जी बलवर्ड ऑफ क्राइस्ट। उसके बाद एक और डिग्री है वो कौन सी है जी, वो पौलुस रसूल की थी, रोमियो 7:12 में मिलती है। उसको इंग्लिश में भी क्या कहेंगे जी, NGDIN। उसे वो कहता है अपने बारे में नथिंग गुड 12 इन मी, कोई भी अच्छी बात मुझ में सकूनत नहीं करती। ये पौलुस रसूल की इल्मे इलाही की डिग्री थी। वो कहता मैं सब रसूलों में सबसे छोटा हूं। हम बहुत दफा लकब के पीछे भागते हैं लेकिन लकब के साथ जो जिम्मेदारी आती है उसे नहीं निभाते। बहुत दफा मैं कहता हूं भाई साहब मैंने इस नोट पर भी जान बूझ कर लिखा है हाथी, और मैं अक्सर मजाक में कहता हूं हमें हाथी बनना है हाथी नहीं बनना। पौलुस रसूल अगर फख्र करता तो उसको फख्र करना जरूर था। आठवें दिन मेरा खतना हुआ, मैं बिन्यामीन के कबीले से हूं, फरीसियों का फरीसी, अब्रानियों का अब्रानी, मैंने खुदा की शरीयत को हर हालात से पूरा किया, किसी भी बात में मुझे कमी नहीं आई। और एक ही बात को जब हम पढ़ते हैं इफ्सियों फिलिपियों 2:2 उसकी जब हम इस सारे बयान को पढ़ते हैं तो वो आखिर में क्या कहता है, कहता है ये सब कुछ अगर मसीह की रास्तबाजी से मिलाया जाए तो क्या है जी, क्रिकेट है। मैंने मसीह की खातर इन सब बातों को अपने कबीले को अपनी गमलियल के कदमों में बैठकर ली हुई तालीम को अपने घराने में मैं फरीसी था अपनी शहरियत में मैं रूमी था अपने मजहब पसंदी में क्या था जी मैं सबसे टॉप यहूदी था और यहाँ तक वो कहता है कि मेरे बारे में तमाम दूसरे यहूदी जानते हैं गलतियों एक बाप उसकी 12 आयत में कि मैं कितना सरगर्म था लेकिन उसने कहा कि मैंने मसीह के साथ इन सब चीजों का जब मुआवजा किया तो उनको क्या समझा जी कूड़ा क्रिकेट समझा उसके लिए जो लफ्ज इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया है जी डंग और यूनानी जबान का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उसे क्या कहते हैं स्कूबाला स्कूबाला किसे कहते हैं जी आदमी औरत या किसी जानवर का जब वो खा पी लेता है तो क्या करता है जी गंद करता है वो कहता है मैंने अपनी तमाम दुनियावी चीजों को क्या समझा है जी इंसान का गंद समझा है मसीह की रास्तबाजी से जब उसकी निस्बत की जाती है और यसाया भी इसके बारे में कहता है तुम्हारी रास्तबाजी गंदे कपड़ों की मानद है और ये गंदे कपड़े कौन से हैं यहां पर औरतें बैठी हैं मैं इस तफसील में नहीं जानता वो कहता है हमारी रासबाजी कूड़े क्रिकेट की मानत है जो यहां पर वो कहता है मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटा है ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों में मसीह की बेक्यास दौलत की मोहब्बत की खुशखबरी दूं हमारा फख्र होना चाहिए कि मैं अंजील का नुमाइंदा हूं हमारा फख्र होना चाहिए मैं यस्सु का गुलाम हूं मैं फख्र होना चाहिए मैं यस्सु का क्या हूं जी हाथ और पांव हूं ना कि हम अपनी डिग्रियों में बहुत दफा उलझते फिरे हाँ जी तुसी किड़े स्कूल तो की थी तुसी किड़े स्कूल तो की थी किन्ने महीने ने की थी किन्ने साल ने की थी हाँ जी मैनू रेवरेंड कहो मेरा 32 साल का तजर्बा बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं आपके कितने स्कूलों में पढ़े हैं मैंने उनको कहा जी मैं एक स्कूल में पढ़ा हूं जिसे कहते हैं जिंदगी की दरसगाह मेरे सूटकेस में बहुत से ऐसे तजर्बात हैं जो मैंने रोजमर्रा के धक्कों से सीखे हैं बहुत से इल्जामों से सीखे हैं किसी कॉलेज में से नहीं मिले किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिले रोजमर्रा की जिंदगी से तोहमतों से ठुकराए जाने से कबूल किए जाने से हौसला बनाने से हौसला तोड़ने से इनकारी होने से इनकार किए जाने से ये सारे तजर्बे हासिल किए और यही मेरी डिग्री और यही मेरे इम्तहान के पेपर हैं जो मसीह में मुझे मिले हैं ताकि दूसरों तक शेयर कर सकूं तो बालूस रसूल कहता है जी और सब पर यह बात रोशन करो जो मोहब्बत तुम पर जाहिर हुई है सब पर यह बात रोशन करो कि जो भेद अजल से सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा उसका इंतजाम क्या है अच्छी बात है तालीम होनी चाहिए अच्छी बात है डिग्री होनी चाहिए अगर नहीं है तो उसे अपनी रुकावट ना बनाए अपना जोर बनाए मैंने अपनी जिंदगी में इस बात को अपनाया है जब बुत प्रस्त जादूगरी कबीले से और ख्याल और हर तरह की गलत बातों के पीछे चलने वाले खानदान से मैंने यीशु मसीह को कबूल किया तो मैंने कोई कॉलेज में नहीं तालीम हासिल की थी मैंने आपको बताऊं आप कहेंगे ले वाकई और ये मैं फख्र से सबको बताता हूं कि भाई मैंने 5वीं क्लास से अपना स्कूल छोड़ दिया था उसके बाद कभी स्कूल में नहीं गया लेकिन मैंने जब खुदावंद यीशु मसीह को 16 साल की उम्र में अपना निजात दहिंदा कबूल किया मैंने कहा कि तू सब जुबानें बोल सकता है तू सब कुछ बनाने वाला है अगर तू मुझे बुलाता है अपनी खिदमत के लिए तो मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर तब मैं तेरा पैरोकार बनूंगा तब मैं तेरी बातों को मानकर जहां कहीं तू भेजेगा मैं जाऊंगा मुझे बोलने की कुव्वत दे अपना कलाम मेरे मुंह में डाल और दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। मैंने खुदा से कहा, खुदावन मुझे उर्दू पढ़ना सिखा, उसने मुझे उर्दू पढ़ना सिखाई। खुदा मुझे इंग्लिश बोलना सिखा, उसने मुझे इंग्लिश बोलना सिखाई। खुदाऊ खुदा मुझे इंग्लिश पढ़ना सिखा, उसने मुझे इंग्लिश पढ़ना सिखाई। खुदाऊ खुदा तेरा कलाम असली जबान में यूनानी और इब्रानी में लिखा गया है, मुझे इसे समझने की कुव्वत और ताकत दे। खुदाऊ खुदा ने उसकी कुव्वत और ताकत दी। खुदाऊ खुदा मैं चाहता हूँ कि तेरे लोगों के लिए बोल सकूँ जो इंग्लिश जबान में है, ताकि दुरुस्त और शुद्ध तरीके से वो पैगाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर सकूं। मुझे तर्जमा करने की कुव्वत और ताकत दे। और उसने दिया, और आज वो खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो खाकसारों को क्या करता है जी, सजा। और नौवीं आयत में लिखा है, ये सब बातों और ये सब सब पर ये बातें रोशन करो कि जो भेद अदल से सब चीज़ों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका इंतज़ाम क्या है। और आगे क्या लिखा है, ताकि अब कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों पर, इख्तियार वालों को जो आसमानी मकानों में हैं मालूम हो जाए। आसमान के फरिश्तों को पता चल जाए कि वो बात जिसकी वजह से आसमान पर जंग हुई थी, कि लूसीफर जो खुदा का प्यारा, खुदा का चुना हुआ एक कायद फरिश्ता था, जिसने क्या किया, नाफरमानी की और तीन तहाई फरिश्तों को अपने साथ मिलाकर खुदा की नाफरमानी में जंग लड़ना शुरू कर दी। उन सब फरिश्तों को पता चल जाए, लूसीफर को पता चल जाए, उनकी तमाम बदरूहों को पता चल जाए, उन तमाम गिराए हुए फरिश्तों को पता चल जाए, उन तमाम लोगों को पता चल जाए जो आसमानी मुकामों में रहते हैं, जो शरारत की फौजें हैं, कि यीशु मसीह ने वो काम कर दिखाया कि जिनका कोई वजूद नहीं था, जिनका कोई सबूत नहीं था, उनको उसने वजूद और सबूत के साथ अपना बदन बना लिया है। और कहता है कि उनको मालूम हो जाए, कभी मौका मिले तो लूसीफर को कहे, किवें भलिया, किवें गुजर रही है, तो उस मुर्गे की तरह है जिसकी गर्दन काट दी गई है और कुकड़ियों वाले अड्डे पर पड़े उस ड्रम में जैसे मुर्गी कर रही है, तू अपने इंजाम का इंतजार कर रहा है। जिस कुदरत को बहुत से लोग चाहते थे, वो कुदरत हमारे अंदर रख दी गई है। मिसाल उसका 28वां बाप कहता है कि साधक क्या है जी, शेरे बब्बर की मानद है। यहां पर कितने साधक हैं जी? सारे साधक। यीशु तो कितने ईमान रख दे यार। तो बाइबल मुकद्दस आपको क्या कहती है? साधक कहती है, मुकद्दसीन कहती है, बेऐब कहती है। इमसाल 28वां बाब पहली आयत में लिखा है, साधक शेरे बब्बर की मानद दलेर है। और उसके बाद पहला पत्रस उसका 5 उसकी 8 में क्या लिखा है? अबलीस के साथ है, होशियार रहो, खबरदार रहो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन शेर बब्बर की तरह दहाड़ता फिरता है कि किसको आड़ खाए, आड़ खाए। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं कि शेर बब्बर की तरह दहाड़ता फिरता है, तो अफ्रीका में मेरे उस्ताद हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है, और जिनके पास वो किताब नहीं, अबजद किताब आपको दी जाएगी। अफ्रीका में क्या है जी, जब कोई शादी के लिए जाता है तो वो क्या होता है जी, 10 से 12 नौजवान क्या करते हैं जी, जब शादी करने से पहले उनकी जो शर्त है वो क्या है जी, कि जाओ जंगल में जाकर भाले के साथ और सिपर के साथ, जो ढाल है, जाकर ग्रुप में क्या करो जी, शेर का शिकार करके आओ। जो शेर का शिकार करके शेर के साथ वापस आएगा, वो गांव में इस लायक है कि शादी कर सके। सो अफ्रीका में ये क्या है जी, ट्रेडिशन है। और नौजवान क्या करते हैं जी, जाते हैं जी, और मैदान में जब वो शिकार करते हैं, वो नहीं कि लोग के नहीं, रवाज क्या है, उन्होंने दायरा बनाकर क्या है जी, शोर डालना शुरू करना है जहां पर उनको पता है कि शेर रहते हैं, ताकि शेर बाहर आए। और शेर की वो नफसियात को बयान करते हैं, वो कहते हैं कि शेर क्या करता है जी, जब उन 12-14 नौजवानों को देखता है जो शोर डाल रहे हैं उस बाले के साथ, और चला रहे हैं तो शेर शेर की आंख रखते हुए जानता है कि इनमें से बुजदिल कौन है और शेर दिल कौन है। और वो क्या करता है जी, उस दायरे के गिर्द शेर जब अपनी फाइनल कॉल करने की कोशिश करता है, वो उनको देखते हुए घूमना शुरू कर देता है। घूमते 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 अपनी वो स्पीड के साथ क्या करता है जी, मिट्टी को अडाना शुरू कर देता है। और वो नौजवान क्या कर रहे हैं जी, उसको ललकार रहे हैं ललकार रहे हैं। और उन 10-12 नौजवानों के दरमियान क्या है जी, शेर एक ही पर हमला करता है। और वो वक्त होता है जहां शेर नहीं या शेर नहीं, या शेर नहीं या शेर नहीं। शेर शेर का मुकाबला करने के लिए जब उस उड़ती हुई धूल में से निकल कर जाता है तो वो उसको जब झपटता है तो मुकाबला शुरू होता है। बाकी जो सारे हैं वो साइड पर हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि अब शेर और शेर का मुकाबला शुरू हो गया है। और दो काम होते हैं, जहां इंसानी शेर मर जाता है या जानवरी शेर क्या हो जाता है जी, घायल किया जाता है। और ये आयत इस बात पर गालब आती है, इस बात को बयान करती है कि होशियार रहो, खबरदार रहो, हमारा दुश्मन शेरे बब्बर की तरह दहाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। जब खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि अय्यूब पर शैतान ने हमला करने की ख्वाहिश की तो उसने किसको देखा, शेरे बब्बर को। जब उसने देखा यूसुफ को कि वो फराउन की बीवी को इस्तेमाल करे कि उसे घायल करे, जो खुदा का प्यारा और पुराने अहदनामा में यसू और मसीह की तस्वीर है। यूसुफ का कोई भी गुनाह पुराने अहदनामा में नहीं लिखा गया कि उसने कब और कहां और कैसे कहां पर वो नाकाम हुआ। वो पुराने अहदनामा में यसू मसीह की तस्वीर है कि मसीहा कैसा होगा। तो शैतान ने जब फराउन की बीवी को इस्तेमाल किया उस पर हमला करने के लिए तो शैतान ने क्या देखा, यूसुफ में शेर को देखा। जब आज आप पर, आपकी खिदमत पर, आपकी रूहानी जिंदगी पर अबलीस क्या करता है जी, वार करता है, तो मकाशवा 5 के मुताबिक वो यहूदा का कबीले का शेरे बब्बर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक क्या है जी, आप में मुझ में रहता है। जब वो यीशु को देखता है तो वो कहता है ये शेर है, इसके मुकाबले में मैं उतरूंगा और वो आपको घायल करना चाहता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है साधक शेरे बब्बर की मानत है। और वो क्यों शेरे बब्बर की मानत है, क्योंकि यहूदा का कबीले का शेरे बब्बर आप में रहता है। अगर आप आजमाए जाएं, अगर आप घायल किए जाएं, अगर आप सताए जाएं, अगर आपकी खिदमत पर वार किया जा रहा है, तो इसका मतलब है अय्यूब के बाद, यूसुफ के बाद, यीशु के बाद, पतरस के बाद, और जिक्रिया के बाद, और यूहन्ना के बाद, समसून के बाद, जदौन के बाद, उसने वहाड़ी में, उसने बूरे में, उसने चिश्तिया में, उसने इस इलाके में, हरूनाबाद में, उसने हर एक इलाके में से देख लिया है कि कौन शेर है, किसको मैं फाड़ने की कोशिश करूंगा। इसलिए शेरे बब्बर की मानत दलेर है। कौन साधक, आप साधक हैं, मकदसीन हैं, उसके बिलवड हैं। इसलिए लकबों की जंग ना लड़े कि मेरा लकब ये होना चाहिए, मेरा लकब ये होना चाहिए। अगर लकब लेना है तो बाइबल से लें। बाइबल मुकद्दस मकाशवा की किताब में आपको क्या कहती है, कलीसिया का फरिश्ता। बाइबल मुकद्दस आपको क्या कहती है, शाही काहिनों का फिरका। बाइबल मुकद्दस आपको कहती है मसीह का एलची। बाइबल मुकद्दस कहती है कि तुम मेरा बदन हो। बाइबल मुकद्दस कहती हो कि तुम मेरे छुड़ाए हुए हो। बाइबल मुकद्दस कहती है यू आर माय बिलवड, तुम मेरे प्यारे हो। बाइबल मुकद्दस कहती है तुम मेरा मुकद्दस हो। बाइबल मुकद्दस कहती है तुम मेरे नुमाइंदे हो। छोड़े PhD, TD, BC को अगर लिखना है, मैंने जल्द लिखना शुरू करना है और हला के रख देना लोगों को अपने नाम के साथ, फैसल शाह। क्योंकि पहला पत्रस दो बाप उसकी नौ आयत के मुताबिक क्या तुम नहीं जानते कि तुम शाही काहिनों का फिरका हो। अगर हमारा बाप यीशु मसीह खुदा बाप दुनिया का मालिक है, यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, उसके घराने के लोग हम क्या बनेंगे जी? सही सैयद हम हैं, सही शाह हम हैं, हम शाही खानदान की लड़ी से हैं, क्योंकि यीशु मसीह दाऊद की असल और नस्ल से, उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। फिरौन की बादशाही जाती रही और कैसर अगस्तस की बादशाही जाती रही और हेरोदीस की बादशाही जाती रही, लेकिन यीशु मसीह के मानने वालों की बादशाही अब तक रहेगी। ये वो भेद है जो पालूसी कहता है कि हमें उन हुकूमत वालों इख्तियार वालों पर जाहिर करने की जरूरत है। और वो कहता है जिसने हमको उस ईमान रखने के सबब से दलेरी है, 12वीं आयत में क्या लिखा है, जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दलेरी और भरोसे के साथ रसाई है। लफ्ज रसाई को अगर आप बाइबल मुकदस में देखें तो ये क्या है जी, रसाई के पीछे क्या है जी, किसी तक पहुंच होना। हम सबको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में सबको रसाई नहीं है। मुझे अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसके ऑफिस में जाने की रसाई नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन की जो क्वीन है उसके चैम्बर में जाने की मुझे और आपको रसाई नहीं है। लेकिन पालूस रसूल कहता है यीशु मसीह में खुदा ने हम सबको अपने तख में दाखिल होने की क्या दी है जी, रसाई और पहुंच और कार दिया है कि हम उस तक जब चाहे पहुंच सकते हैं। और इब्रानियों के खत में वो कहता है कि हमको दलेरी है कि उसके खून के वसीला से हम सबको उसके तख्त के सामने जाने की क्या है जी, रसाई हासिल है। आयम खुदा के सुन चुके खुदा बाप इस सारी चाय को बनाने वाले हाथों को, आए हुए तेरे बंदे बंदियों को सबको बड़ी बरकत दे। सारा जलाल तेरे बेटे हमारे मुनजी यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में।